हरे कृष्णा। मैं श्री गुरु श्री प्रभुपाद और हमारी परंपरा के सब आचार्यों की वंदना करता हूँ, विशेष करके जो वृंदावन के 6 गोस्वामी हैं, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, जिन्होंने वृंदावन की महिमा को पूरे विश्व में प्रकट किया है। मैं आप सब वैष्णवों का भी आशीर्वाद चाहता हूँ, जिसके द्वारा मैं भगवान कृष्ण के विषय में कुछ बोल सकूँ। हम यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। वह दिन जब आज से करीब 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण इस भूतल पर प्रकट हुए थे। भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने से पहले मैं इस बात पर चर्चा करना चाहूँगा कि कैसे कृष्ण का अवतार दिव्य है, कृष्ण का तत्व गुह्य है। साधारण व्यक्ति भगवान कृष्ण को नहीं जान सकता। जो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, जो पूर्ण समय भगवान की सेवा में मग्न हैं और जिन्होंने भगवान के चरणों को अपना सर्वस्व स्वीकार कर लिया है, ऐसे व्यक्ति भगवान के तत्व को जान सकते हैं और वे इस तत्व को दूसरों को समझा सकते हैं। भगवान कृष्ण गीता में बतलाते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। चौथे अध्याय के इस सुंदर श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि मेरा जन्म और मेरा कर्म सभी दिव्य है, और जो व्यक्ति ये जान लेता है कि कैसे मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, वो व्यक्ति इस भौतिक संसार में लौट कर नहीं आता। वो ये शरीर छोड़ने के बाद वापस मेरे धाम को लौटता है। मानव जीवन का उद्देश्य है इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 चीज़ें हैं, बहुत दुखदायी हैं, और जो भी संसार में आता है उसको 4 प्रकार के विपत्तियां सहन करनी पड़ती हैं। सबसे पहले जन्म, माँ के गर्भ में रहना 9 महीने के लिए कष्टदायक वातावरण में, अपने सिर को घुटनों के साथ स्पर्श करते हुए आसपास बहुत गंदे पदार्थ, बहुत कष्टदायक स्थिति है। अगर आज उस स्थिति में अगर 5 मिनट के लिए भी रखा जाए हमें, तो तुरंत मृत्यु हो जाएगी। ये तो भगवान की विशेष कृपा है कि बालक माँ के गर्भ में रहकर जीवित रहता है। बहुत कष्टदायक स्थिति होती है। बच्चा आसपास कीड़ों से घिरा हुआ होता है, मलमूत्र, और वो चल भी नहीं सकता, कहीं जा भी नहीं सकता, और दुखदायी स्थिति में वो कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण, हे गोपाल, मुझे बाहर निकालो इस जठराग्नि से। पास में अग्नि होती है, हर व्यक्ति के शरीर में जो जठराग्नि होती है, फायर ऑफ डाइजेशन, अग्नि के ताप से वो पीड़ित होते हैं। उस स्थिति में प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण, हे कृष्ण, मुझे बाहर निकालो, मैं बाहर आते ही आपकी सेवा में लगूंगा। ऐसा हम सब ने प्रार्थना की थी। तो 9 महीने बहुत ही कष्टदायक वातावरण में रहने के बाद भगवान की कृपा से वो बालक बाहर निकलते हैं। और अगर वो भक्त परिवार में है तो बहुत सौभाग्य की बात है, वो कृष्ण को याद कर सकते हैं। लेकिन अगर वो भक्त के परिवार में नहीं है तो भूल जाता है कृष्ण को। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती है, और आज के ज़माने में बचपन से ही कष्ट हो जाते हैं। 4 या 5 साल के बच्चे को स्कूल शुरू हो जाते हैं, उससे भी कम है ना, 4 साल या 3 साल, केजी, प्री केजी, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, पाठशाला में जाना। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो दूसरी तीसरी चौथी में जाता है, उसके बैग का साइज़ बढ़ता जाता है, पुस्तकों का। मैं अभी एक भक्त के घर में था 2 दिन पहले दिल्ली में, और वे बता रहे थे कि सुबह 9 से 5 तक बच्चों को पाठशाला होती है, और शाम को 6 से 8 तक ट्यूशन होते हैं, और 8 बजे के बाद होमवर्क पूरा करना होता है। मैंने जब ये सुना तो मैंने कहा इसीलिए मैं कृष्ण भक्ति सीरियसली करना चाहता हूँ। बचपन से ही कष्ट है, पाठशाला के बाद विश्वविद्यालय में कष्ट, उसके बाद व्यक्ति डिग्री के बाद जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई, सब जगह प्रयास करते हैं, इंटरव्यू, और फिर कहीं जॉब मिलता है तो वो सोचते हैं आनंदम बुद्धि वर्धनम, अब तो बहुत खुशी हो गई। लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि अभी यहाँ पे और कष्ट हैं, और फिर विवाह परिवार जीवन में फिर और कष्ट, और धीरे धीरे 40-50 साल उम्र पार करने के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है, और बुढ़ापे से पहले ही बीमारियाँ, बचपन से बीमारियाँ। चाइल्ड स्पेशलिस्ट को पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। आजकल पीडियाट्रिशियन डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छा, बहुत पॉपुलर है, क्योंकि बचपन में बीमारी शुरू हो जाती है। आप सोचोगे जन्माष्टमी के अवसर पर मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ। आज सवेरे मैंने राधा गोपीनाथ मंदिर में बम्बई में जन्माष्टमी का लेक्चर, प्रभुपाद जी का लेक्चर लगाया था, और प्रभुपाद यही वर्णन कर रहे थे कि जब हम समझेंगे कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि में कितने कष्ट हैं, तो हम कृष्ण लीला और कृष्ण नाम को गंभीरता से ले सकते हैं। वी हैव टू बिकम परफेक्ट इन दिस लाइफ। मैं श्रील प्रभुपाद जी का एक वाक्य पढ़ रहा हूँ, ये कृष्णा पुस्तक से है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कथा सुन रहे थे, और वो बोल रहे थे अब मैं कृष्ण कथा सुनने में इतना उत्सुक हूँ कि मुझे भूख और प्यास की सुध ही नहीं है। और श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, एवरी वन ऑफ अस शुड बी कॉन्शियस ऑफ डेथ एट एवरी मोमेंट। हर क्षण व्यक्ति को पता होना चाहिए कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। दिस लाइफ इज नॉट एट ऑल अश्योर्ड, एट एनी टाइम वन कैन डाई। मृत्यु कभी भी आ सकती है। इट डज नॉट मैटर वेदर वन इज अ यंग मैन और एन ओल्ड मैन। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जवान है या वृद्ध है। Before death takes place, we must become fully Krishna conscious. मृत्यु के आने से पहले हमें पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना है, शुद्ध भक्त बनना है। एक रियल चैलेंज है। जनरली एक लाइफ में, एक जीवन में शुद्ध बन जाना ये आसान नहीं है। फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस, फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस, पूर्ण कृष्ण भावना भावित, मतलब 24 घंटे भगवान का स्मरण करना। आप में से कितने भक्त हैं जिनको लगता है कि मैं 24 घंटे कृष्ण का स्मरण कर पाता हूँ? मुश्किल से 2 घंटे हम जप करते हैं, वो भी शुद्ध जप हो जाता है, उसमें स्मरण बिल्कुल नहीं होता। लेकिन हमें शुद्ध बनना है। मानव जीवन का उद्देश्य है शुद्ध बनना। तो जन्म, उसके बाद बीमारियाँ शुरू होती हैं, बचपन से बीमारियाँ, स्पेशली 40-50 साल के बाद तो शरीर एक पुराने व्हीकल की तरह हो जाते हैं। जैसे कोई पुराना गाड़ी है आपके पास, पुराना हीरो होंडा या पुराना कार है उसको। अभी हम मंदिर से आ रहे थे तो एक टाटा सोमो में बैठे, दिव्य सोमो था, टाटा सोमो, वो चल नहीं रहा था। फिर लक्ष्मीनारायण प्रभु जी पीछे गए और धक्का दिया, बहुत धक्का दिया, चार पांच ब्रह्मचारी जो अभी अभी गरम गरम प्रसाद खा के आए थे हलवा, लेकिन फिर भी नहीं चला। अभी प्रभु जी ने बोला आओ मैं आपको दूसरे कार में छोड़ता हूँ, प्रभु जी की दया से मैं पहुँच सका, लेकिन वो नहीं चला। तो मैं सोच रहा था मेरा शरीर भी ऐसा ही है, पुराना टाटा सोमो बन रहा है अभी, पहले तेज़ी से दौड़ता था और अब बीच बीच में कभी कभी इंजन स्टार्ट नहीं होता, कभी तीन बार चाबी घुमाना पड़ता है और फिर भी स्टार्ट नहीं होता। तो धीरे धीरे वृद्धावस्था आ रही है। और आप बोलोगे प्रभु जी आपके लिए वृद्धावस्था आ रही है क्योंकि आप 40-45 साल के हो गए, हम तो जवान हैं, हम 20 वर्ष के हैं, आनंदम बुद्धि वर्धनम। लेकिन ये मत भूलो कि हर व्यक्ति वृद्धावस्था की तरफ जा रहा है। सूर्य के उदय होने से लेकर अस्त होने तक हम हर दिन मृत्यु के करीब आ रहे हैं, हर दिन। लेकिन जो व्यक्ति हरि कथा, कृष्ण कथा सुनने में लगे हैं, वो हर दिन शाश्वत जीवन के करीब आ रहे हैं। तो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्याधि और जरा यानी बुढ़ापा और अंत में मृत्यु, मृत्यु को कौन टाल सकता है? इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति आपसे मिलने आता है तो आप उसे कह सकते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम बिजी। मोबाइल स्विच ऑफ कर सकते हैं आप, किसी से बात नहीं करना। लेकिन जब मृत्यु का समय आता है तो आप बोलेंगे मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आना चाहता। लेकिन जब आपको लेने आए बोलेंगे चलिए हम आपको ज़बरदस्ती ले जाएंगे। अगर आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो हमेशा ये सोचिए कि आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है। रियली मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी का वाक्य रिपीट कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी बोलते हैं एवरीवन शुड बी कॉन्शियस ऑफ डेथ एट एवरी मोमेंट, हर क्षण ये चेतना होनी चाहिए कि मेरी मृत्यु कभी भी आ सकती। मुझे याद है लास्ट ईयर मेरी हर वर्ष ये सेवा होती है जन्माष्टमी के समय राधा कुंज बिहारी भक्तों को कृष्ण बुक सुनाना, लेकिन पिछले वर्ष मेरे को एक हार्ट अटैक, हार्ट का प्रॉब्लम था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। अब भगवान की दया से अब मैं स्वास्थ्य अच्छा हुआ। और इस वर्ष मेरी एक गुरु भाई जिनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता था, जो मेरे से 10 साल कम उम्र के 35 वर्ष के, उनको भी हार्ट अटैक हुआ। भगवान की दया से अभी उनका स्वास्थ्य अच्छा हो गया। लेकिन तात्पर्य यह है कि बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु ये हर क्षण है। हमें अपने मन में याद रखना चाहिए कि आज का दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन हो सकता है। जब आप ये याद रखेंगे तो कृष्णा पुस्तक पढ़ने के लिए आप बहुत उत्सुक होंगे, आप कृष्ण नाम लेने के लिए उत्सुक होंगे। आप सोचोगे आज मेरा आखिरी दिन है, मुझे सुबह जल्दी उठ के जप करना है, आज आखिरी दिन है मुझे कृष्ण के बारे में सुनना है, आज आखिरी दिन है मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। जैसे आप सब वैष्णव बड़े मेहनत के साथ ये कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं, तो उत्सुकता होनी चाहिए कृष्ण की सेवा के लिए, ईगरनेस। तत्र लौल्यम अपि मूल्यत्। रूप गोस्वामी बोलते हैं कृष्ण भक्ति प्राइस प्राप्त करने के लिए, प्राइस क्या है? लौल्यम, इंटेंस ग्रीड, इंटेंस ग्रीड, लोलुपता होना, मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है, मुझे कृष्ण के चरणों को प्राप्त करना है, शरीर छोड़ने से पहले मुझे शुद्ध बनना है, मेरे को इस दुनिया में वापस लौट कर नहीं आना है। क्या आपके अंदर ऐसी उत्सुकता है? अगर ऐसे आपके अंदर उत्सुकता है तो आप भाग्यशाली हैं, तब आप कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद इस पुस्तक में बता रहे हैं, कृष्णा पुस्तक में वो बोलते हैं एनीबडी हु रीड्स दिस बुक कृष्णा विल बिकम अ लवर ऑफ कृष्ण। जो भी एक कृष्ण की कथा को सुनेगा वो कृष्ण का सच्चा प्रेमी बन जाएगा। तो मैं ये आज थोड़ा सा कृष्ण पुस्तक की शुरुआत का चर्चा करना चाहूँगा, लेकिन पहले मैंने ये 10-15 मिनट जो बताया आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण भावना में प्रगति के लिए हमेशा इस भावना में रहिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम, इस कॉन्शियसनेस में रहिए कि मेरा शरीर नाशवान है, मुझे कृष्ण भक्ति करनी है, मेरे हृदय में कृष्ण प्रकट होने हैं। जब देवकी के 6 गर्भों की मृत्यु हुई, उसके बाद बलराम जी आए और फिर कृष्ण आए, ऐसी हमारे हृदय के जो 6 अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर, जब ये नष्ट हो जाएंगे तब भगवान श्याम सुंदर प्रकट होंगे, तब भगवान कृष्ण प्रकट होंगे। देवकी के 6 पुत्रों को किसने मारा? कंस ने। ऐसे हमारे हृदय के 6 अनर्थ कैसे नष्ट होंगे? कंस क्या है? आचार्य बताते हैं कि कंस है भौतिक अस्तित्व का डर, फियर ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। जब हमें भौतिक अस्तित्व का डर लगेगा तब ये हृदय के अनर्थ दूर होंगे, और उसके बाद फिर बलराम जी और फिर कृष्ण आएंगे। तो जो कृष्ण को अपने हृदय में प्रकट देखना चाहते हैं, जन्माष्टमी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ऑल्टर पर कृष्ण का अभिषेक करना, वो तो है ही, वो जरूरी है, लेकिन जन्माष्टमी का असली अर्थ है हमारे हृदय में कृष्ण प्रकट हो। और हृदय में कृष्ण कैसे प्रकट होंगे? पहले 6 अनर्थ दूर होने होंगे, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर। ये 6 दुश्मन हैं जो हमारे हृदय में बैठ गए हैं, इनको नष्ट करना है। और ये नष्ट कैसे होंगे? प्रभुपाद जी बोलते हैं फियर ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस इज कंस, जस्ट लाइक कंस किल्ड द 6 सन्स ऑफ देवकी, फियर ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस विल डिस्ट्रॉय द अनर्थस विद इन अवर हार्ट। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारे हृदय के जो अनर्थ हैं वो कैसे दूर होंगे? भौतिक अस्तित्व का डर होना, हमें डर होना चाहिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं बिना कृष्ण को याद किए हुए देह त्याग कर दूं। अगर ऐसा हो गया कि मैं अंत समय कृष्ण को नहीं याद किया तो मुझे फिर से जन्म लेना होगा, तो माया से डरना चाहिए, ज़्यादा बिंदास नहीं होना चाहिए, थोड़ा डरना अच्छा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं पशु योनि में चला जाऊं। महाराज भरत तो इतने बड़े राजा थे लेकिन एक हिरण के प्रति आसक्त हो गए और उसके कारण उनको अगला जन्म लेना पड़ा हिरण शरीर में। तो व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए, लेट मी बिकम फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस, सततम कीर्तयंतो माम यतंतश्च दृढ़व्रता, सततम कीर्तयंतो माम। भक्त मतलब है जो हमेशा भगवान की कथा, नाम, कीर्तन में लगे। कीर्तन मतलब न केवल कीर्तन मृदंग करता से कीर्तन, जो मैं बोल रहा हूँ ये भी कीर्तन है और सुनना ये श्रवण है। तो जन्माष्टमी के ये दिन एक विशेष अवसर होता है अपने मन को कृष्ण कथा में लगाने के लिए। और परीक्षित महाराज यहाँ पर हम देख रहे हैं वो सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं कि हे गुरुदेव आप बोलते रहिए। अब वो दशम स्कंद पर आ गए हैं, दशम स्कंद पर आ गए इसका मतलब 4 या 5 दिन तो बीत चुके होंगे। परीक्षित महाराज ये नहीं बोल रहे गुरुदेव जल्दी करो 7 दिन पूरे हो रहे हैं, नहीं, परीक्षित महाराज बहुत उत्सुकता से प्रश्न पूछ रहे हैं। और जो हम प्रसंग पढ़ रहे हैं उसमें परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि आपने 9वें स्कंद में बताया कि बलदेव रोहिणी के पुत्र हैं, और आपने ये भी बताया कि रोहिणी कि बलदेव देवकी के पुत्र भी हैं, तो एक ही बालक दो माताओं का पुत्र कैसे हो सकता है? ये रहस्य का समझाइए। शिष्य का कर्तव्य है गुरु से प्रश्न पूछना। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपद्यक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिन। तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, और फिर वो अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमने सुना वसुदेव जी के घर में जन्म लेते ही कृष्ण नंद महाराज के घर में चले गए, ये क्यों ऐसा हुआ? क्यों कृष्ण वसुदेव जी के घर को छोड़कर नंद महाराज के पास गए? और मैंने सुना कि कृष्ण ने अपने माता के भाई, अपने मामा, मराठी में क्या बोलते हैं, मामा ना, मामा, स्वतः चे मामा चा वध केला है ना, मराठी क्या बोलते हैं वध को, क्या बोलते हैं, हत्या, हत्या, ठार भी बोलते हैं ना, नहीं अपने मामा को मार दिया। इस दुनिया में साधारण व्यक्ति अपने मामा को नहीं मारते, पिता को नहीं मारते, लेकिन भगवान ने से अपने मामा को मारा, ऐसा क्यों हुआ? और मैंने सुना कि कृष्ण के बहुत सारे रानियां थी द्वारका में, वो भी मुझे बताइए। तो ये सब सुनने के बाद अब दशम स्कंद शुरुआत होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब सुखदेव गोस्वामी उनके प्रश्नों को सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। कृष्ण कथा गंगा के समान है, जैसे गंगा उच्च लोक, मध्य लोक और निम्न लोक तीनों लोकों के वासियों को पवित्र बनाने वाली है, ऐसे ही भगवान कृष्ण की कथा जो है प्रश्न पूछने वाले, जवाब देने वाले और आम जनता सबको लाभ प्रदान करने वाली है। अब कथा शुरू होती है। द्वापर युग का समय है, द्वापर युग के अंत के समय पृथ्वी पर बहुत सा बोझ बढ़ गया था असुरों का, और उस समय जब पूरी दुनिया बहुत डिस्टर्ब थी, तब भूमि, धरती माता ब्रह्मा जी के पास गए। भूमि ने एक गाय का रूप धारण किया, और भूमि आंखों में आंसू भरे हुए ब्रह्मा जी के पास गई, और उन्होंने बताया कि हमें बहुत कष्ट हो रहा है, धरती पर असुरों की संख्या बढ़ गई है। अब ब्रह्मा जी को जब ये पता चला तो ब्रह्मा जी गए क्षीर सागर, दूध के सागर के पास, जहाँ पर भगवान विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु लेटे हुए होते हैं। अब ब्रह्मा जी के साथ शिवजी भी गए, और सब देवता भी गए, और भूमि भी गए, सारे देवता एक पास बैठ गए। और ब्रह्मा जी ने आंख बंद करके भगवान विष्णु के चरणों में प्रार्थना की, हे भगवान, यहाँ पर पृथ्वी पर असुरों का बोझ बहुत बढ़ गया है। बाकी देवता भी बैठे हुए थे, लेकिन सिर्फ ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे थे। गुरु के माध्यम के द्वारा ही हम भगवान को अपनी प्रार्थनाएं सुना सकते हैं। तब उस समय सब देवता पुरुष सूक्त प्रार्थना अर्पण कर रहे थे, और ब्रह्मा जी ने अपनी कष्ट बताया। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को जवाब दिया, और वो बोले, स्वयं भगवान श्री कृष्ण धरती पर प्रकट होने वाले हैं अपने सारे शक्तियों के साथ, और जब वो धरती पर आएंगे अपने आप ये जो असुरों का बोझ है वो नष्ट हो जाएगा। आप सब देवता भी जाओ और आप भी जन्म लो यदुकुल में, और भगवान कृष्ण को मदद करो। और उनको बताया गया कि अनंत शेष बलराम वो भी बहुत जल्दी प्रकट होने वाले हैं, और उनको बताया गया कि योग माया भी प्रकट होने वाली है। तो ये जो क्षीरोदकशे विष्णु की आवाज़ थी वो सारे देवता नहीं सुन सके, सिर्फ ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी ने ये आवाज फिर सारे देवताओं को सुनाई। ये परंपरा है। परंपरा का मतलब है कि एक अधिकृत गुरु के द्वारा ज्ञान ग्रहण करना। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, श्रीमद् भागवत में बताया गया कि शुरुआत में भगवान कृष्ण ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने ज्ञान नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने ज्ञान व्यासदेव को दिया, एवं परंपरा प्राप्त। जब आप श्रील प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ रहे हो या सुन रहे हो तो आपको वही फल प्राप्त होता है जो आप ब्रह्मा जी से या नारद मुनि किसे सुन रहे हो, अगर वो अधिकृत परंपरा में है तो। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अगर आपके पास अभी नहीं है तो आज जरूर ये कृष्णा पुस्तक खरीदी करिए। ये कृष्णा पुस्तक जो इंग्लिश में है या हिंदी में, कृष्णा मराठी में, कृष्णा पुस्तक का नाम सेम है सभी भाषाओं में, आप सब इसको पढ़िए। क्योंकि शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं, एनीबडी हु रीड्स दिस बुक कृष्णा विल बिकम अ लवर ऑफ कृष्णा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को संदेश बता दिया और आदेश दिया कि आप सब जन्म लो यदुवंश में। सारे देवताओं ने अलग अलग परिवार में जन्म लिया। अब कथा का दूसरा मोड़ है, एक यदुवंश में एक राजा थे जिनका नाम था शूरसेन। मथुरा जिले के वे राजा थे और शूरसेन के राजा, सॉरी, शूरसेन जिस राज्य पर राज्य करते थे उस इलाके का नाम भी शूरसेन था। डिस्ट्रिक्ट का नाम शूरसेन और राजा का नाम शूरसेन। मथुरा उस समय यदुओं की राजधानी मानी जाती थी और शूरसेन के एक पुत्र थे जिसका नाम था वसुदेव। वसुदेव का विवाह देवकी के साथ निश्चित हुआ और विवाह होने के बाद कंस, जो कि देवकी का भाई था, वो अपनी बहन के लिए और अपने बहनोई के लिए रथ हांकने के लिए तैयार हो गया, चैरियट का ड्राइवर बन गया। और देवकी के पिताजी का नाम था देवक और देवक ने अपनी पुत्री का विवाह बड़े धूमधाम के साथ कराया और बहुत सारे चैरिटी भी दान दिए। और वैदिक सिस्टम है कि जब किसी लड़की का विवाह होता है तो भाई जो है वो उसको अपने ससुराल तक छोड़कर आता है। तो महाराज देवक ने 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1,800 रथ और बहुत सारी चीज़ें दहेज में दिए। ये 5,000 साल पहले की बात है, आजकल तो बहुत मुश्किल है। आजकल विवाह में कभी एक घोड़ा दिया जाता है, वो हीरो होंडा या कोई व्हीकल। लेकिन मैं ये बात डिटेल में बता रहा हूँ कि कैसे मटेरियली भी हम देखें भौतिक दृष्टि से तो सभ्यता उस समय बहुत आगे बढ़ी हुई थी, वेल्थ में, मटेरियल वेल्थ में भी। जब वो लेकर जा रहे थे और बहुत सारे शंख बजाए जा रहे थे, उस समय एक आकाशवाणी हुई जो विशेष करके कंस के लिए थी। अरे मूर्ख कंस, तुम नहीं जानते लेकिन तुम जो रथ चला रहे हो, तुम्हारी बहन के लिए उसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल सिद्ध होगा, वो तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। कंस बहुत असुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, हालांकि वो अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, लेकिन जब उसने देखा कि मेरी बहन से होने वाली संतान मेरे मृत्यु का कारण बनेगी तो बहुत क्रोधित हो गया। उसका सारा प्रेम कुछ ही क्षणों में नष्ट हो गया और बहुत क्रोधित होकर आप एक हाथ से देवकी के बालों को पकड़कर दूसरे हाथ से तलवार लेकर उसको मारने के लिए तुल गया। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं यह है भौतिक जगत का प्रेम। यह भौतिक जगत का प्रेम यह स्वार्थ पर आधारित है। यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, इस इंग्लिश में बोलते हैं कि अगर आप मेरे से अच्छा व्यवहार करते हो तो मैं भी अच्छा करूँगा, लेकिन अगर मेरे इंद्र तृप्ति में थोड़ी भी बाधा आ रही है तुम्हारी वजह से तो मैं मारने के लिए तैयार हो जाऊँगा। ये है मटीरियल वर्ल्ड का प्रेम। सच्चा प्रेम कृष्ण से प्रेम होता है और वो प्रेम हम सबके हृदय में है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सद्य कबू नाय श्रवणादि शुद्ध चित्त कुरिय उदय। शास्त्रों में कहा गया कि कृष्ण प्रेम हर जीव के हृदय में है, लेकिन अब वो सुषुप्त है, वो डॉर्मेंट है। वो प्रेम जागृत होता है श्रवण और कीर्तन से। जैसे आप सब अपना मूल्यवान समय निकालकर कृष्ण के बारे में सुनने के लिए आए हैं, या रोज सवेरे आप उठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, ये जो श्रवण और कीर्तन की विधि है इससे प्रेम जागृत होता है। ये प्रेम ही है जो आत्मा को संतुष्टि प्रदान कर सकता है। हीरे सोने पोजीशन वेल्थ पारिवारिक सुख से आत्मा संतुष्ट नहीं होती, लेकिन जब कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है तब आत्मा को संतुष्टि होती है। और प्रेम जागृत करने का सरल तरीका है कृष्ण के बारे में सुनना, कृष्ण की सेवा करना, और सबसे महत्वपूर्ण सच्चे दिल से कृष्ण को पुकारना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आप ऐसे बोल रहे हो जैसे आज ही आपने निर्जल व्रत रखा होगा। निर्जल व्रत कल है ना कि आज है? कल है। तो अगर आज ही आप इतने एकदम कमज़ोर हो जाएंगे तो फिर कल कैसे होगा? जोर से बोलो, एकदम कादा कुंज बिहारी मंदिर तक आवाज़ जानी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू, आप सब जाग गए इससे। तो ये सच्चा प्रेम जागृत करने का तरीका है। जन्माष्टमी का अर्थ है न केवल साल में एक दिन या दो दिन, एक भक्त के लिए हर दिन जन्माष्टमी होती है। जब भी कृष्ण प्रकट हुए वो जन्माष्टमी है। और कृष्ण कैसे प्रकट होते हैं? नाम जप और नाम कीर्तन से। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हैते हय सर्व जगत उद्धार। चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि इस कलयुग में कृष्ण अपने नाम के रूप में आए, अपनी सारी शक्तियों के साथ। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हे कृष्ण, आपके नाम में आपकी सारी शक्तियां, सत चेत आनंद, कृष्ण के लादिनी शक्ति, संवित शक्ति, संधिनी शक्ति, सब उनके नाम में है। तो जब हम सच्चे दिल से कृष्ण का नाम लेते हैं तो कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। जन्माष्टमी का अर्थ है सच्चे दिल से कृष्ण को पुकारना। नाम कीर्तन ही जन्माष्टमी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जब हम उस भावना से पुकारते हैं जैसे द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था, भरी सभा में जब द्रौपदी की बेइज्जती हो रही थी तब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था, वैसे हमें कृष्ण को पुकारना। गजेंद्र हाथी जब मगरमच्छ ने उनके पैर पकड़ लिए उसमें उसने कृष्ण को पुकारा। ये भौतिक जगत भयावह स्थान है, इज अ डेंजरस प्लेस। पदम पदम यदि पदम कृष्ण नाम ही आश्रय। द सेफेस्ट प्लेस, प्रभुपाद जी बोलते हैं, द सेफेस्ट प्लेस इज वेयर द होली नेम ऑफ कृष्ण इज बींग चैंटेड। जहां पर नाम कीर्तन हो रहा है वही स्थान सबसे ज्यादा सुखदायक है, वही ज्यादा सबसे सुरक्षित है। हमेशा नाम का आश्रय लीजिए, सोते हुए, बैठते हुए, उठते हुए, खाते हुए, चलते हुए, हमेशा अपनी जीवा से या जीभ से नहीं बोल सकते तो मन में 16 माला तो आप जीवा के साथ बोलिए, उसके बाद जब फ्री टाइम मिले तो मन में जप करिए या बोल कर जप करिए। नाम से प्रेम करो, अगर आप नाम से प्रेम करोगे तो बहुत जल्दी हृदय शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध हृदय में कृष्ण प्रकट होंगे। शुद्ध हृदय में जब आप हरे कृष्ण बोलोगे तो कृष्ण का रूप दिखाई पड़ेगा। क्यों हम कृष्ण को नहीं देख पाते? हम सुनते हैं ना कि भगवान सब जगह पर हैं। कितने लोगों को विश्वास है कि भगवान सब जगह पर है? हाथ ऊपर करिए सभी, आप सभी महाभागवत भक्त हैं, आप सबको विश्वास है, एटलीस्ट थियोरेटिकली। आप महाभागवत नहीं भी हो तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है, शास्त्रों में कहा है, फिर हम कृष्ण को देख क्यों नहीं पाते? कृष्ण सब जगह पर हैं, इसका मतलब साउंड सिस्टम में भी है, माइक में भी है, मुझे तो खाली छेद दिख रहा है यहाँ पर। क्यों नहीं कृष्ण दिख रहे हमें? क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, हमारी आंखें नहीं है कृष्ण को देखने के लिए। जन्माष्टमी का मतलब है स्पिरिचुअल विजन डेवलप करना, आध्यात्मिक आंखें। वो आंखें कैसी होती हैं, कोई बता सकता है? कौन सी आंखें हैं? प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणास्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजा। ब्रह्म संहिता में बताया गया कि जिसने अपने आंखों में प्रेम का अंजन लगाया है वो व्यक्ति भगवान को सब जगह पर देख सकता, अपने हृदय में भी देख सकता। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम हर रोज सवेरे उठकर नामस्मरण करें, नाम को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग बनाएं, फिर हमारे लिए हर दिन जन्माष्टमी होगी, हर दिन हम कृष्ण को याद कर सकेंगे। जितने भी प्रवचन हैं मेरे द्वारा या दूसरे भक्तों द्वारा या बड़े बड़े साधुओं के द्वारा या आचार्यों के द्वारा, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, प्रभुपाद, महान वैष्णवों के सब परिचय का एसेंस सार इसमें है, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचि। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्ण। कृष्ण को हमेशा स्मरण करो, कभी भूलो मत। जो व्यक्ति हर समय कृष्ण को याद कर रहे वो हर क्षण जन्माष्टमी मना रहे, वो हर क्षण कृष्ण के संपर्क में है। कृष्ण हमारे हृदय में है और कृष्ण हमारे परम मित्र हैं। लेकिन जब हमारा हृदय शुद्ध होगा तब हम कृष्ण को देख सकेंगे। लेकिन यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कंस, ये कंस की मेंटालिटी है निजी स्वार्थ को देखना। कंस ये नहीं सोच रहा था कि मेरी बहन है मुझे नहीं मारना चाहिए, वही सोच रहा था कि मेरा जीवन खतरे में। सेल्फिशनेस, भौतिक जगत मतलब स्वार्थ। और उस समय वसुदेव जी ने देखा अभी भी मेरा विवाह हुआ है, अभी तक मेरी पत्नी घर में भी नहीं आई और उसका भाई उसको मारने पे तुला है। वसुदेव जी ने कंस को समझाने का प्रयास किया, हे कंस तुम क्यों डर रहे हो? ये शरीर तो नाशवान है, आत्मा अमर होती है। तुम इतने क्रोधित हो गए हो कि तुम एक स्त्री को मार रहे हो। शास्त्र के अनुसार स्त्री को और वृद्ध व्यक्ति को और बच्चे को कभी मारा नहीं जाता, और वो स्त्री साधारण नहीं, वो तुम्हारी बहन और वो भी अभी उसका विवाह हुआ है। तुम मृत्यु से डर रहे हो। अब प्रभुपाद एक सेंटेंस बोलते हैं, डेथ इज ऑलरेडी बॉर्न विद बर्थ, डेथ इज ऑलरेडी बॉर्न विद बर्थ। जब जन्म लेते हो साथ में मृत्यु भी जन्म लेती है। जैसे मान लो आपको जन्म लेके 20 साल हो गए तो कोई आपसे कहता है हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना, कि आपको बधाइयाँ हो 20 साल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 20 साल मृत्यु के करीब आ गए, है कि नहीं? खुशी की बात है, हरी बोल, लव कर या लव कर। हम जल्दी मृत्यु करीब आई। तो लोग समझ नहीं पाते। जैसे बकरी होती है, बकरी को कसाई खाने में ले जा रहे हैं, तो आगे चार पांच बकरी के आगे बकरी को मारा जा रहा है, और पीछे वाली बकरी सोच रही है कि हरी भरी घास में आवाज़ कर रहे हैं, है ना। ऐसे हम समझ नहीं पाते कि मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई, परदादा की मृत्यु हो गई, कि मेरा भी नंबर आएगा। नहीं नहीं वो बहुत दुख की बात है, वो चले गए, लेकिन मैं तो अभी समय है। वसुदेव जी समझा रहे हैं, कंस तुम्हारी मृत्यु तो आनी ही है, अगर तुम देवकी को कुछ भी कर लो, अगर तुम्हारी मृत्यु होनी है तो वो होगी। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, काल और समुद्र की लहरें कभी रुकते नहीं है, कभी रुकते नहीं है। और फिर वसुदेव जी बहुत तरीके समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कंस को समझाना ऐसे जैसे ना कुत्ते की पूंछ है, उसको आप कितना भी स्ट्रेट करो, आयरन करो, फिर वो टेढ़ी हो जाती है। तो कंस समझ नहीं पाता। वसुदेव जी दूसरा ट्रिक यूज करते हैं। वसुदेव जी बोलते हैं, कंस तुमको डर किस बात का है? तुमको डर तो है देवकी के आठवें गर्भ से ना। देवकी तो तुम्हें नहीं मारने वाली, वो तो तुम्हारी बहन है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जो भी संतान होगी जन्म लेते ही वो मैं तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। जब वसुदेव जी ने ऐसा वचन दिया तो कंस जानता था वसुदेव जी का कैरेक्टर कैसा है। वो जानता था कि वसुदेव जी महात्मा हैं और वो अपने वचन को जरूर पूरा करेंगे। वो जानता था कि वसुदेव उनकी तरह नहीं है जो अपने वचन से मुकर जाएं। इसीलिए कंस ने जब ये सुना तब उन्होंने स्वीकार कर दिया, और वसुदेव जी ने कंस की बहुत प्रशंसा की और फिर वो लौट कर आ गए। सबसे पहले एक पुत्र हुआ, इसका नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी अपने वचनों के बद्ध होकर उस बालक को कंस के पास ले गए कि तुम इसको मार सकते हो। ये देखिए वसुदेव और देवकी ने कितना त्याग किया, कितना सैक्रिफाइस किया, एक माँ के लिए, एक पिता के लिए, नवजात शिशु को उस व्यक्ति के हाथ में देना जो उनको मारने वाला है। प्रश्न उठता है, वसुदेव और देवकी ने जब देखा कि कंस उनके पुत्र को मार रहे हैं, तो उन्होंने और संतान उत्पत्ति क्यों की? तब इसका आंसर बताया गया कि वसुदेव और देवकी जानते थे कि आठवां पुत्र स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण होंगे, और इसीलिए कृष्ण को धरती पर प्रकट होने के लिए हमें यह तपस्या करनी है, हमें कष्ट सहन करना है। भक्ति का मार्ग भी इसमें बहुत सारे कष्ट आते हैं, कठिनाई आते हैं, लेकिन जो इन सब कठिनाइयों को स्वीकार करता है उसके हृदय में अंत में कृष्ण प्रकट होते हैं। भक्ति बहुत चीप चीज़ नहीं है, बहुत सस्ती चीज़ नहीं है। बाइबल में कहा गया, सेल ऑल दैट यू हैव टू परचेज दिस पर्ल। ये भक्ति का जो मोती है उसको प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसे वसुदेव और देवकी की तरह। पहले पुत्र को जब वो कंस के पास ले गए तब कंस को दया आ गई। कंस कहने लगा, वसुदेव मुझे से क्या डर है? मुझे डर तो आठवें पुत्र से, आप इसको वापस ले जा सकते हो। जब वसुदेव जी वापस लेकर जा रहे थे तब मन ही मन सोच रहे थे, इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि राजा पे, पॉलिटिशियन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में कहा गया। तो जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त है उस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। हम देखते हैं इस दुनिया में भी जो पावर, पोजीशन, पोस्ट के पीछे हैं, वो व्यक्ति कभी भी अपने वचनों को मुकर सकते हैं, बदल सकते हैं। हमें भरोसा करना चाहिए गुरु साधु और वैष्णवों पर, गुरु साधु और शास्त्र पर, क्योंकि ये तीन चीज़ जो है जो बोलते हैं वो भरोसे की चीज़ है, ये रियल अश्योरेंस है। और गुरु साधु और शास्त्र सब बताते हैं कि कलयुग में एक ही उपाय है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यत्। और वो एक उपाय है सच्चे दिल से प्रेम से कृष्ण को पुकारना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपकी आवाज़ फिर से कम हो गई, इतना ज़ोर से बोलिए कि कम से कम आवाज़ अभी कुंज बिहारी तक चली गई, अब बम्बई राधा गोपीनाथ मंदिर तक आवाज़ जानी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फैन नहीं है कोई, फैन अरेंजमेंट नहीं है, कोई फैन का अरेंजमेंट है क्या? इधर बहुत गर्म है। तो एक पुत्र के बाद हरे कृष्ण, सब लोग यहां ध्यान दीजिए, सॉरी, एक पुत्र के बाद जब उन्होंने उस पुत्र को वापस भेज दिया तब नारद मुनि आए कंस से मिलने। आप जानते हैं नारद मुनि चाहते थे कि भगवान का अवतार जल्दी से जल्दी हो, तो नारद मुनि आके कंस को बोलने लगे, कंस तुम जानते हो, तुम समझ नहीं पा रहे, मैं जब तुमसे मिलने आ रहा था तो आकाश में स्वर्ग से मैं गुजर रहा था और उस समय मैंने क्या देखा, उस समय मैंने देखा कि देवता आपस में मिलकर योजना बना रहे हैं और योजना का मुख्य विषय है तुम्हारा वध करना, प्लानिंग चल रही है तुम्हारे बारे में। अरे जान लो ये सारे देवता हैं जो यदु वंश में प्रकट हुए हैं, और ये भी जान लो हे कंस, देवकी का कोई भी पुत्र आठवां पुत्र हो सकता है। और ऐसा कहकर नारद मुनि चले गए और कंस समझ गया और उसने फिर एक एक करके छह पुत्रों की हत्या कर दी। प्रश्न उठता है कि नारद मुनि ने क्यों गड़बड़ कर दी, नारद मुनि ने क्यों कंस को उकसाया, नारद मुनि वैष्णव हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, नारद मुनि क्यों ऐसा कर रहे हैं? नारद मुनि जैसे वैष्णव वो कृष्ण की आज्ञा से कार्य करते हैं, उनका हर कार्य जो है वो कृष्ण की प्रेरणा से होता है, और इसीलिए वो चाहते थे कि भगवान कृष्ण जल्दी से धरती पर प्रकट हों, और इसीलिए उन्होंने कंस को उकसाया। नारद मुनि प्योर डिवोटी हैं, वो कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। कंस ने क्रोध में आकर अपने स्वयं के पिता उग्रसेन को भी गिरफ्तार कर दिया और उन्होंने वसुदेव जी के पिता शूरसेन का भी राज्य ग्रहण कर लिया, और यदु भोज और अंधक वंश के नेतृत्व करने वाले उग्रसेन अपने पिता को भी जेल में डालकर स्वयं अपने आप को राजा घोषित कर दिया। जो कंस की मेंटालिटी है इसका वर्णन भगवद्गीता में 16वें अध्याय में किया गया, आसुरी प्रवृत्ति और दैवी प्रवृत्ति। आसुरी प्रवृत्ति में व्यक्ति होता है वो सोचता है कि ये मेरा है, ये मैंने प्राप्त कर लिया है, ये मेरा शत्रु है इसको मैं मार डालूँगा, ये संपत्ति मैंने प्राप्त कर ली है और अब मैं और भी प्राप्त कर लूँगा। इस तरह से असुर प्रवृत्ति के व्यक्ति का लक्षण ये कंस में देखा जा रहा है। हम सब के अंदर कंस जैसी भावना भी है, लेकिन नाम कीर्तन करने से हृदय के सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं। इसके बाद कंस ने दूसरे राक्षसों के साथ दोस्ती करना शुरू किया, पूतना अघासुर बकासुर तृणावर्त एंड कंपनी, ये सब से कंस दोस्ती करने लगा और ये सब कंस के गुलाम बन गए। कंस जानता था कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो ये मुझे मदद करेंगे। जब देवकी के गर्भ में सातवां बालक प्रवेश किया। ये सातवां बालक अनंत शेष थे, ये भगवान के विस्तारित स्वरूप थे जिनको बलराम कहते हैं। पिछले सप्ताह शायद आप सब लोगों ने बलराम जयंती मनाई होगी, 28 तारीख को। बलराम जी कृष्ण के बड़े भाई के रूप में पहले देवकी के गर्भ में थे, और जब बलराम जी ने शरीर में प्रवेश किया तो देवकी के गर्भ से एक तेज निकलने लगा, एक एफ्लुजेंस, एक प्रकाश आने लगा, और देवकी समझ गई कि यह बालक बहुत विशेष है। उसको डर लग रहा था कि शायद कंस इसका वध नहीं करे। उस समय भगवान कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया। भगवान बोले योग माया से कि हे देवी, कंस के जेल में देवकी और वसुदेव मेरे शुद्ध भक्त हैं, और उस समय अनंत शेष या बलराम जी वो देवकी के गर्भ में हैं, और कंस जरूर उनका वध कर देगा। इसीलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम इस बालक को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करो। अब ये बताया जाता है कि वसुदेव जी के बहुत सारी पत्नियाँ थी, उसमें से एक देवकी थी जो उनके साथ रह रहे थे, लेकिन बाकी जो बहुत सारे पत्नियाँ थे वो कंस के डर के कारण अलग अलग राज्यों में सुरक्षित थे। और रोहिणी हालांकि वसुदेव जी की पत्नी थी, वो नंद महाराज के घर में नंद और यशोदा के साथ रह रहे थे, क्योंकि नंद और वसुदेव जी दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। तो इसलिए वसुदेव जी ने अपने एक पत्नी रोहिणी को नंद महाराज के घर रहने के लिए कहा था, और भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि तुम बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, और अगर आप ऐसा करोगे तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा और इस दुनिया में तुम्हारी बहुत रूप से पूजा की जाएगी, तुम्हारे अनेक नाम होंगे जैसे दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका। और फिर भगवान ने उसे बताया कि इसके बाद तुम भी प्रकट होगे योग माया, तो मेरी बहन के रूप में प्रकट होगे। श्रील प्रभुपाद यहाँ समझाते हैं कि ये योग माया है, ये भगवान की शक्ति है, और शक्ति और शक्तिमान इसमें कोई अंतर नहीं होता। जैसे सूर्य और सूर्य के किरण हमेशा साथ में रहते हैं, से जहाँ पर भगवान हैं वहाँ पर उनकी शक्तियाँ भी रहते हैं। विशेष करके नाम में सारी शक्तियाँ होते हैं। जब हम गाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम कीर्तन में भगवान की सारी कृपा शक्ति है, जो हृदय के मल का मार्जन करने वाला है। योग माया ने भगवान की प्रदक्षिणा की और उनकी आज्ञा के अनुसार बलराम जी को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। इसीलिए उनका नाम हो गया संकर्षण, क्योंकि वो एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थापित किए गए थे और वो ये दोनों वंशों को जोड़ रहे थे। उनका एक और नाम हुआ बलराम, बल बल यानी आध्यात्मिक बल, राम यानी आनंद देने वाले, इनका नाम हुआ बलराम या बलदेव या बलभद्र। और अब समय आया भगवान कृष्ण का प्रकट होने का। सबसे पहले भगवान कृष्ण वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए, और फिर वसुदेव जी के हृदय से वो देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए, ट्रांसफर हुए, और फिर देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। कृष्ण का जब प्रकट होना है वो ऐसा नहीं था जैसे साधारण पुरुष और स्त्री के संग से बालक का जन्म होता है। कृष्ण पहले वसुदेव जी के हृदय में आए, फिर वहाँ से देवकी के हृदय में आए, और देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में आए। यह है जन्म कर्म चमे दिव्यम। दिव्यम का मतलब है ट्रांसेंडेंटल, ये भौतिक नहीं है। जैसे मैं और आप जन्म लेते हैं, हम प्रकृति के नियमों के अधीन होकर जन्म लेते हैं। हम अपने आप के माता पिता का स्वयं चयन नहीं करते, आप स्वयं डिसाइड नहीं करते ये मेरे माता है ये मेरे पापा हैं। जन्म से पहले चॉइस नहीं होता, बाद में जो होते हैं वो होते हैं, बदल नहीं सकते आप। लेकिन कृष्ण डिसाइड करते हैं कि मैं वसुदेव और देवकी के यहाँ पर जन्म लूँगा, फिर यशोदा और नंद के यहाँ पर बड़ा होऊंगा। तो हमारे जन्म में और भगवान के जन्म में बहुत अंतर है। हम माया के अधीन होते हैं और कृष्ण मायाधीश हैं। हम प्रकृति के नियम के अधीन होते हैं लेकिन कृष्ण प्रकृति के नियमों से परे हैं। भगवान बोलते हैं कि मैं अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ। संभवामी आत्म मायया अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम समदिष्टाय संभवामी आत्म मायया। भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते। एक सुंदर उदाहरण है जो श्रील प्रभुपाद जी देते हैं। एक जेल में कई कैदी रहते हैं। अब जेल में जो कैदी रहते हैं उन्होंने जरूर कोई बुरा कार्य किया है, वो बद्ध हैं जेल में, बाहर नहीं निकल सकते जेल से। लेकिन कभी कभी देश के राजा वो भी जेल में आते हैं देखने के लिए कि नागरिकों की देखभाल कैसे हो रही है, कि जेल का कारोबार जेल का मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, वो देखने के लिए कई बार वे भी आते हैं। ऑफकोर्स आजकल तो मंत्री दूसरे कारण से भी जेल में आते हैं, वो आप सुनते होंगे न्यूज़पेपर्स में। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक अच्छा राजा है कई बार वो जेल में आता है। जो राजा जेल में आ रहा है और कैदी जेल में आ रहा है इसमें क्या अंतर है? जो कैदी जेल में आ रहा है वो ज़बरदस्ती उसको रखा जा रहा है, और कैदी बोले ठीक है खूब ज़्यादा मैं बाहर पढ़ तो आता मैं बाहर जाना चाहता हूँ, तो वो नहीं जा सकता जेल से। लेकिन राजा है स्वयं से आए और आधे घंटे बाद बोला चलो मैं जा रहा हूँ, तो जेल का सुप्रिंटेंडेंट नहीं बोलेगा हरी बोल आप आए हो 3 महीना मिनिमम यहाँ पे रहना पड़ता है। नहीं, राजा बोले मैं स्वराट हूँ, कृष्ण स्वराट हैं, इंडिपेंडेंट अपनी इच्छा से। तुम्हारा इच्छा ब्रह्मा कोरे न सृजन, तुम्हारा इच्छा विष्णु कोरे न पालन। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि हे गोपाल तुम्ही सर्वेश्वर ईश्वर ब्रजेंद्र कुमार, हे कृष्ण तुम सब ईश्वरों के ईश्वर हो, तुम्हारी इच्छा से ब्रह्मा जी दुनिया की रचना करते हैं, तुम्हारी इच्छा से विष्णु पालन करते हैं, और तुम्हारी इच्छा से शिव जी नाश करते हैं। ये कृष्ण है। जन्माष्टमी का मतलब है कृष्ण के तत्व को जानना कि कृष्ण कौन है। कृष्ण भगवान है, षडैश्वर्य पूर्ण है, सब कारणों के कारण है, और अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। हर समय कृष्ण की लीला कहीं ना कहीं चल रही होती है। जैसे अभी यहाँ रात के 8:30 बज रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं सूर्योदय हो रहा होगा। अगर आप अमेरिका फ़ोन करें तो पता चलेगा वहाँ पर सुबह के 8:30 बज रहे हैं। ऐसे ही कोई ना कोई ब्रह्मांड में कृष्ण प्रकट हो रहे हैं। किसी ब्रह्मांड में कृष्ण प्रकट हो रहे हैं, किसी में कृष्ण पूतना को मार रहे हैं, किसी में कृष्ण तृणावर्त को मार रहे हैं। इसको बोलते हैं नित्य लीला। नित्य लीला मतलब कृष्ण की लीला नित्य रूप से कहीं ना कहीं हो रही है। एक ब्रह्मांड में लीला खत्म होती है, दूसरी जगह में शुरू होती है, शाश्वत है भगवान की लीला। तो इस तरह से जब भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में आते हैं तो देवकी के शरीर से एक बहुत ही दिव्य तेज, एक प्रकाश प्रकट होने लगता है, और तब वसुदेव जी और देवकी दोनों समझ जाते हैं स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट हो रहे हैं। जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पूर्व दिशा सूर्य की माता है। ऐसे कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में कृष्ण का कोई माता नहीं है, कोई पिता नहीं है, कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्ण भगवान सबके माता पिता हैं। माता अहम पिता गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, मैं ही कृता हूँ, मैं ही माता हूँ। लेकिन जगत के पिता हैं वो देवकी और वसुदेव को अपने माता और पिता के रूप में स्वीकार करते हैं, लीला के रूप में। आप सोचिए कृष्ण कितने महान हैं, कि कृष्ण के एक एक्सपांशन है महाविष्णु, जिनके रोम रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं, जिनके शरीर से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, वो कैसे किसी एक माता के शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जैसे एक माता है जो ब्रह्मांड के अंदर है छोटी सी, उसके अंदर वो व्यक्ति कैसे जा सकता है जिसके अंदर सारा ब्रह्मांड है। वो समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, क्योंकि भगवान को कोई समझ नहीं सकता। जैसे ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर मैंने चश्मा रखा है, राइट, लेकिन फिर चश्मे के अंदर कैसे बॉक्स हो सकता है? कृष्ण के अंदर पूरा ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड के अंदर देवकी है, राइट, और देवकी के गर्भ में कैसे कृष्ण आ सकते हैं? इसको बोलते हैं अचिंत्य। कृष्ण का तत्व अचिंत्य है। यशोदा माता ने जब एक बार कृष्ण को बोला मुंह खोल के दिखाओ, तो क्या देखा मुंह में? पूरा ब्रह्मांड। लेकिन वही कृष्ण एक छोटे बालक की तरह देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। ये भगवान की लीला है अपनी इच्छा से। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, देवकी वॉज कन्फाइंड विद इन द हाउस ऑफ कंस, शी लुक लाइक अ सप्रेस्ड फायर। जैसे किसी बर्तन में अग्नि रखी हो, अग्नि का तेज बाहर प्रकट नहीं हो रहा, लेकिन है वो तेज, ऐसे देवकी ने स्वयं भगवान कृष्ण को अपने गर्भ में रखा है। लेकिन सबको पता चल गया, कंस को भी पता चल रहा था देखकर कि ये बहुत विशेष बालक है, यही मेरा काल है, यही विष्णु है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ज्ञान को बांटना चाहिए, विशेष करके आध्यात्मिक ज्ञान को। भारत भूमि ते हैले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक कोरी कर पर उपकार। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं श्लोक में तात्पर्य में कि जिसने भारत भूमि में जन्म लिया है उसका कर्तव्य है परोपकार करना। परोपकार का मतलब क्या है? दूसरों को भगवान कृष्ण के बारे में बताना। भगवद गीता और श्रीमद् भागवत का संदेश सब जीवात्माओं को सुनाना, यह परोपकार है। जब हम दूसरों के लिए अपना जीवन अर्पण करते हैं तब हमारे हृदय में कृष्ण प्रकट होते हैं। जन्माष्टमी का मतलब है कृष्ण का नाम प्रचार करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इस्कॉन मूवमेंट, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं इस्कॉन मूवमेंट इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। ये इस्कॉन मूवमेंट, इस्कॉन आंदोलन, ये कृष्ण से अभिन्न है। जैसे कंस ने बहुत प्रयास किया कृष्ण को मारने का, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, ऐसे कई असुरी व्यक्ति हैं जो इस्कॉन आंदोलन को रोकने का प्रयास करते रहे हैं, और कई होंगे, लेकिन कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये जो इस्कॉन आंदोलन है, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन, वो कृष्ण ही है, वो कृष्ण का ही एक रूप है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जब कंस ने देवकी के दिव्य तेज को देखा वो घबरा गया, वो सोचने लगा ये मेरा काल है, और हर समय वो कृष्ण को देख रहा था, सोते हुए उठते हुए जागते हुए वो जहाँ भी देखता, दीवार में कृष्ण, आंगन में कृष्ण, पानी पीते समय ग्लास में कृष्ण, सब जगह वो कृष्ण को देख रहा था। इस तरह से वो कृष्ण भावना भावित हो गया, लेकिन पॉजिटिवली नहीं, नेगेटिवली, नकारात्मक रूप से। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि वी हैव टू रेंडर सर्विस फेवरेबली नॉट अनफेवरेबली। कंस जो भक्ति कर रहा था वो भक्ति नहीं कहा जा सकता, वो प्रतिकूल सेवा है। भक्ति का मतलब है अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल रूप से कृष्ण को याद करना, ये भक्ति है। एक बार तो कंस बैठा था अपने गद्दी पे और उधर से उसकी पत्नी आई, उसके दो पत्नियां थी, एक का नाम था अस्ति और दूसरे का नाम था प्राप्ति। ये दोनों राजा जरासंध की पुत्री थी, जरासंध उनके प्रिय ससुर जी थे, दोनों जैसे थे, ससुर और दामाद एक ही कैटेगरी के थे, दोनों असुर थे। तो इतने कृष्ण के विचारों में लगे हुए थे, वो देख रहे थे यहाँ कृष्ण 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 कृष्ण। जब उन्होंने अपने पत्नी को देखा आते हुए, ओ कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम आ गए। और फिर वो पास में आए, बोले अरे हम तो आपके पत्नी हैं, आप क्यों घबरा रहे हैं। उसकी चेतना इतनी मग्न थी कृष्ण में, लेकिन वो भक्ति नहीं कहा जा सकता। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये प्रतिकूल था, अनुकूल सेवा नहीं थी। कंस सोचने लगा मुझे देवकी को मार देना चाहिए, लेकिन फिर सोचने लगा अगर मैं देवकी को मार दूंगा तो मेरी बदनामी होगी कि इसने अपनी बहन को मारा। देवकी मेरी बहन है, वो स्त्री है, स्त्री को नहीं मारा जाता कभी। अरे मेरी बहन भी है और ये भी गर्भवती है, इसके गर्भ में एक बालक है, तो मुझे दया दिखानी चाहिए। इसलिए उसने अपने आप को रोक दिया। उस समय आकाश से देवकी के घर, देवकी के जेल के पास अनेक देवता आने लगे, ब्रह्मा शिव नारद गणेश सब स्तुति करने लगे और सब घोषणा करने लगे भगवान की महानता का। सबसे पहला शब्द उन्होंने बोला कि भगवान आप सत्य प्रतिज्ञ हो, यू आर ऑलवेज ट्रू टू योर वाउस, आप अपने अपने वचनों को पूरा करते हो। कौंतेय प्रति जानी ही नमे भक्त्या प्रणश्यति, हे कुंती के पुत्र अर्जुन ये घोषित कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि भगवान आपका अवतार अभी होने वाला है असुरों को मारने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम। फिर देवताओं ने अगला स्तुति की भगवान की कि आप परम सत्य हो। परम सत्य का मतलब है जो भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में सत्य है। सृष्टि के पहले भी भगवान थे, सृष्टि के समय भी भगवान हैं और सृष्टि के बाद भी भगवान रहते हैं। सब देवता भगवान के चरणों में गिरकर अनेक रूप से स्तुति करने लगे और कहने लगे भगवान कई लोग हैं जो बहुत ऊंचे स्तर तक जाते हैं, ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, अपने आप को मुक्त मानते हैं। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानी न, अपने आप को मुक्त मानते हैं लेकिन अविशुद्ध बुद्धया, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। आरुह्य कृच्छे न पतंती अदह, वो ऊंचे से ऊंचे स्तर जाकर भी उनका पतन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के चरणों का आश्रय नहीं लेते। दूसरी ओर जो भक्त हैं वो भवसागर को पार कर देते हैं आपके चरणों का आश्रय लेने से। अब एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, इस संसार की तुलना एक सागर के साथ की गई है। सागर को अपने बल से पार नहीं किया जा सकता, अगर आप एक्सपर्ट स्विमर भी हैं तो भी सागर तो नहीं पार कर सकते। लेकिन अगर आप एक अच्छी नौका का आश्रय लेते हो तो सागर को पार किया जा सकता है। वो नौका है कृष्ण के चरण कमल। अगर आप अपने मन को अपने ध्यान को कृष्ण के चरणों में लगाते हो तो ये पूरा संसार सागर, ये विशाल पानी है, वो उतना बन जाता है जितना गाय के बछड़े के पैरों में जितना पानी होता है। गाय का छोटा सा बछड़ा, मराठी में कहते बछड़ा ना, वासरू वासरू, छोटा सा बछड़ा है, उसके जो चरण हैं उसमें कितना पानी आएगा। अगर गाय के पैर या गाय के बछड़े के पैर के चरण में पानी है तो आप क्रॉस करने से पहले सोचोगे नहीं अभी क्या होगा, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, आप तुरंत पार कर दोगे। इसे जिसने कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया है वो भवसागर को आसानी से पार कर देते। समाश्रित ये पदप्लवम महत् पुण्यम पद यशो मुरारी भवाम बुधिर वत्स पदम 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 यद विपदम नतेशम। ये भी ब्रह्मा जी की एक स्तुति है कि हे कृष्ण जो आपके चरणों का आश्रय लेते हैं उनके लिए भवसागर ऐसा हो जाता है जितना कि गाय के बछड़े के पैरों में जो पानी होता है उसके बराबर। और साधु पुरुष आपके चरणों को नौका के रूप में लेकर भवसागर को पार करते हैं, लेकिन पार करने के बाद नौका को वहीं पर छोड़ देते हैं। जैसे मान लो मुझे यहाँ से उस ओर जाना है और मैं नौका में बैठ के जाता हूँ तो नौका भी उधर चली जाएगी। लेकिन यहाँ बताया गया कि साधु पुरुष भवसागर पार करते हैं और नौका वहीं पर रह जाती है, ये कैसे? प्रभुपाद जी समझाते हैं। चलिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति भवसागर पार करने के लिए नौका के पास में जाता है तो सागर सूख जाता है। वह सागर उतना बन जाता है जितना गाय के बछड़े के पैर में पानी है। जैसे सोचता है कि हमें कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हैं तो बस आप पार हो जाते हैं और फिर नौका रहती है बाकी लोगों के लिए। साधु पुरुष प्रीचिंग करते हैं, आओ कम बैक होम, बैक टू गॉड हेड, चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं सिर्फ 5 मिनट और बोलूँगा, उसके बाद हम लोग कीर्तन करेंगे। ये 2 अध्याय मैं पूरा करना चाहता था, तभी इस 5 मिनट में बोलूँगा और कल हम 3रे अध्याय से शुरू करेंगे जो कृष्ण का अवतार है, एक्चुअल अवतार, क्योंकि वैष्णव कैलेंडर से कल जन्माष्टमी है। तो कल सवेरे 8 बजे भागवत में मैं कंटिन्यू करूँगा, लेकिन जो बचा हुआ मैं संक्षिप्त में 5 मिनट में बोलना चाहूँगा कि ये सारे देवता जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा हमें कृष्ण की महानता का बोध हो रहा है, ज्ञान मिल रहा है। जब शुद्ध भक्त भगवान के बारे में बोलते हैं तब हम भगवान के तत्व को समझ सकते हैं, अपने बुद्धि से भगवान को नहीं जाना जा सकता। देवता भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि भगवान आपका रूप शाश्वत है, शुद्ध सत्व है, हे भगवान लक्ष्मी देवी के पति आप ही हैं और निर्विशेषवादी जो आपकी सेवा नहीं करते उनके उनके मार्ग में बहुत सारे बाधाएं आते हैं। हे भगवान आपके अवतार अनंत हैं, रामादि मूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठन, आप अलग अलग अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं लेकिन आपका मुख्य अवतार है कृष्ण, आपका नाम है श्याम सुंदर। श्याम यानी काला, दुनिया में काला व्यक्ति ज़्यादा सुंदर नहीं माना जाता, लेकिन कृष्ण जब श्याम भी होते हैं तो श्याम सुंदर बोलते हैं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभान गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि वेणुम कोनंतम अरविंद दलायताक्ष, ये भगवान के रूप है। शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान के सब शास्त्रों में सब वर्णन किया हुआ है, भगवान का नाम, उनका रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं, हमारे पास अधिकृत जानकारी है। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान विज्ञानम हैं जो कि दिव्य अनुभव के द्वारा जाने जा सकते हैं। हे भगवान आपको समझना मुश्किल है तर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, लेकिन भक्ति के द्वारा आप जाने जा सकते हैं। वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ, जो आपके स्वयं के भक्त हैं वही आपको जान सकते हैं। भगवान एब्सोल्यूट हैं, इस दुनिया में एब्सोल्यूट का मतलब है कि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं होना। इस दुनिया में अगर मैं बोलता हूँ आम 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 या चावल 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 तो मेरा पेट नहीं भरेगा, राइट? जैसे लेक्चर ख़त्म होगा, प्रसाद होगा, तब पेट भरेगा। लेकिन कृष्ण और कृष्ण का नाम अभिन्न है। इस दुनिया में अगर आप बोलो वाटर वाटर वाटर, पानी, जल, नीर, सब सब भाषा में बोल दो पानी, प्यास नहीं बुझेगी। लेकिन कृष्ण का नाम और कृष्ण अभिन्न है, इसलिए जब आप कृष्ण का नाम लेते हो, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, तो कृष्ण राधा रानी के साथ और सब शक्तियों के साथ प्रकट होते हैं। अंत में देवता भगवान कृष्ण को बोलते हैं गर्भ के अंदर, आप अजन्मा हो। कई बार जब मुसलमान धर्म के लोग होते हैं वो बोलते हैं कि आप कृष्ण की पूजा करते हो वो गलत है, क्योंकि भगवान तो अजन्मा होते हैं। कुरान में लिखा गया है कि अल्लाह वो है जिसका जन्म नहीं होता। लेकिन हम उनको समझाते हैं कि भगवान जन्म लेते भी हैं और अजन्मा भी हैं। भगवान छोटे से छोटे भी हैं, बड़े से बड़े भी हैं। भगवान पूरे दुनिया को मुक्त करने वाले हैं और स्वयं यशोदा माता के बंधन में आ जाते हैं। ये भगवान की खूबी है। वो भगवान जो पूरे दुनिया को निर्भय कर देते हैं, वो यशोदा माता के छड़ी से डर जाते हैं। हमें समझना चाहिए कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं। जो व्यक्ति जान लेता है कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य हैं, वो इस संसार में जन्म नहीं लेता, वो वापस भगवान के धाम लौटता है। और अंत में देवता बोलते हैं भगवान से, हम आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। आप वही हो जो मत्स्य अवतार के रूप में आते हो, आप ही परशुराम जी के रूप में आते हो, और आप ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप में आते हो, नरसिंह के रूप में आप ही आते हो। और जाने से पहले देवता माता देवकी की ओर मुड़कर बोलते हैं कि हे देवकी, आप घबराओ मत, तुम्हारे गर्भ में इस समय स्वयं भगवान हैं। कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण स्वयं भगवान हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, लेकिन सत्य यह है, एते चम शकला पुंस कृष्णास्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान है अपने सारे ऐश्वर्यों के साथ। इसलिए हे देवकी, अपने भ्राता कंस से डरो मत, क्योंकि इस समय स्वयं भगवान तुम्हारे गर्भ में प्रकट हुए हैं, और उनके साथ साथ उनके बड़े भाई बलराम जी भी प्रकट हुए हैं। देवकी को बहुत चिंता थी कृष्ण की। विष्णु पुराण में कहा गया है कि देवता रेगुलरली अपने पत्नियों के साथ आते हैं, शिव जी पार्वती के साथ, ब्रह्मा जी अपने पत्नी के साथ, इंद्र अपने पत्नियों के साथ, और देवकी को सांत्वना देते थे, घबराओ मत, स्वयं कृष्ण प्रकट हो रहे हैं, स्वयं कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे। इस तरह से पूजा करने के बाद सारे देवता अपने अपने धामों में वापस चले गए। तो अंत में कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे ये जो तीसरा अध्याय है, लेकिन शायद आप में से कई लोग नहीं होंगे, इसलिए मैं सबसे प्रमुख चीज़ ये फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। सबसे प्रमुख चीज़ ये है कि हम कृष्ण की कथाओं का सुनते हैं, ये कर्णों के छिद्र से ये जो वाणी प्रवेश कर रही है श्रील प्रभुपाद और पूर्वज आचार्यों की, उसके द्वारा कृष्ण प्रकट होते हैं। कृष्ण कथा और कृष्ण अभिन्न है। जब सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के वार्तालाप को हम सुनते हैं ध्यानपूर्वक, तो उससे हमारे हृदय का अपवित्रता दूर हो जाती। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोकेर भक्तिर भवतीम निश्चित। हृदय के सब अमंगल दूर हो जाते हैं कृष्ण कथा के द्वारा। तो कृष्ण कथा वो भी कृष्ण से अभिन्न है। तो जन्माष्टमी का अर्थ है कृष्ण की कथा को सुनना। और सबसे इम्पोर्टेंट कलयुग के लिए, कलेर दोषेर निधे राजन अस्तिरिये को महान गुण कीर्तनत एव कृष्ण से मुक्त संग परम। हालांकि कलयुग दोषों की निधि है, बहुत सारे असंख्य दोष हैं, लेकिन एक महान गुण है, और वो है कृष्ण का नाम कीर्तन करने से सारे बंधन नष्ट हो जाते। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण अपने सारे ऐश्वर्यों के साथ इस 16 नाम वाले मंत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसे ब्रजवासी जब इंद्र ने बहुत जोर से बरसात की तो घबराते हुए सारे ब्रजवासी पुकारने लगे कृष्ण 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 कृष्ण, ऐसे ही हमें कृष्ण के नाम को पुकारना है कि हे कृष्ण, जैसे आपने ब्रजवासियों को इंद्र के बरसात से बचाया था, वैसे मुझे माया के बरसात से बचाओ। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतम तरंती। ये माया शक्ति को पार करना बहुत मुश्किल है, जो कृष्ण के शरण में आता है वो माया को पार कर सकता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, मुझे बताया गया कि अधिकांश डिवोटी जो आज यहाँ आए हैं वो ऑलरेडी भगवान का नाम जप कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो आज से या कल से शुरू कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के सब इंस्ट्रक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट है अटेंटिवली चैंटिंग करना, ध्यानपूर्वक कृष्ण नाम लेना। सवेरे के समय माला पर व्यक्तिक रूप से, और जैसे आज हम यहाँ पर हैं तो संकीर्तन के रूप में सब मिलकर कृष्ण नाम लेना। इससे न केवल हमारे व्यक्तिगत शुद्धिकरण होता है बल्कि पूरा वातावरण, पूरा पूना शहर, पूरा ब्रह्मांड शुद्ध हो जाता है। तभी हम कीर्तन में भाग लेंगे, सामूहिक कीर्तन में, और आप सब इतने उच्च स्वर में पुकारना, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 राम 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 हरे, इतने उच्च स्वर में कीर्तन में भाग लीजिए, और इस तरह से भगवान राधा कुंज बिहारी प्रसन्न होंगे। हरे कृष्ण।